शीर्षक सामाजिक सांस्कृतिक प्रदेय। भक्ति आंदोलन और भक्ति काव्य की अपनी अब तक की चर्चा में हम जिस बात को बराबर रेखांकित करते आए हैं और जो वस्तुतः हमारी चर्चा का केंद्रीय स्वर बनी है, वह यह कि भक्ति काव्य धर्म और भक्ति के केंद्रीयता के बावजूद महज पूजा पाठ, ध्यान उपासना और उनके माध्यम से इस लोक के दुखों से मोक्ष पाते हुए परलोक में सुख भोगने का संदेश और प्रेरणा देने वाला काव्य नहीं है। धर्म और भक्ति के आवरण में वह सामाजिक अन्याय के विरोध में और मानवीय न्याय के पक्ष में, एक उन्नत मानवीय समाज और एक उन्नत मूल्य अवस्था के पक्ष में खड़ा होने वाला और उसके लिए संघर्ष करने वाला काव्य है। ऐसा नहीं है, जैसा कि प्रायः ऊपरी तौर पर समझ लिया जाता है, कि सामाजिक अन्याय के विरोध में और मानवीय न्याय के पक्ष में निर्गुण संतों के स्वर ज्यादा मुखर हैं और उनमें अधिक उष्मा है, जबकि सगुण भक्ति की कविता में परंपरागत सामाजिक संरचना का प्रायः समर्थन हुआ है और उसमें चली आ रही सामाजिक सोच को भी थोड़े बहुत संशोधनों के साथ स्वीकार भी किया गया है। वस्तुतः भक्ति और अध्यात्म की जमीन पर निर्गुण और सगुण कविता में आलंबन के निर्गुण और सगुण होने के बावजूद लगभग समानता ही है। अंतर दिखाई पड़ता है जब ये भक्त कवि अपने समय और समाज पर दृष्टि डालते हैं, उनका चित्रण करते हैं और उन पर अपनी राय देते हैं। यहाँ जरूर ऐसा लगता है कि सगुण भक्तों की तुलना में निर्गुण संतों की सामाजिक सोच अधिक प्रगतिशील है और सामाजिक अन्याय या चली आ रही सामाजिक संरचना की मानवीयता के विरोध में वे ज्यादा मुखर और चिंतनशील है। परंतु इस निर्णय पर पहुंचने के पहले हमें निर्गुण संतों और सगुण भक्तों की रचनाशीलता से समग्रता में साक्षात्कार करने की, उसे ऊपर ही नहीं भीतर तक पढ़ने और गुनने की जरूरत है। पृष्ठ संख्या 289। लोक और शास्त्र से अपने अपने लगाव के चलते क्रमशः निर्गुण और सगुण कविता अपने अपने ढंग से समृद्ध और सीमाबद्ध जरूर हुए हैं। बदलते हुए समाज ने भी उन पर अपने निशान लगाए हैं। निर्गुण और सगुण भक्तों का समाज दर्शन एक जैसा जरूर नहीं है, परंतु जैसा हमने कहा, बावजूद इसके सामाजिक चिंता में अपने मानवीय सरोकारों में सगुण भक्त निर्गुण संतों से एकदम अलग थलग नहीं है। कविता महज विचार ही नहीं होती, मनुष्य का इंद्रिय बोध और उसका भाव जगत भी उसका अभिन्न अंग होते हैं। वरन इन्हीं भूमियों पर कविता सही मायने में कविता बनती है और संवेदना के धरातल पर अपनी स्थायी पहचान बनाती है। जैसा कि हम आगे देखेंगे, विचार के स्तर पर सगुण भक्तों ने जो भी कुछ कहा है और प्रतिपादित किया हो, भावबोध के धरातल पर, संवेदना के धरातल पर, चित्रण के धरातल पर, वे विचार के स्तर पर अपने कहे हुए से भिन्न मानव प्रेम, सामाजिक न्याय तथा उन मूल्यों को ही सामने लाते हैं जो निर्गुण भक्तों का प्रतिपाद्य है। जरूरत इसलिए सगुण और निर्गुण कविता को उसकी समग्रता में भीतर तक थाहने और पहचानने की है। इसी क्रम में इन भक्तों और संतों के अंतर्विरोध भी हमारे सामने आते हैं, उनकी शक्ति और सीमा हमारे सामने उद्घाटित होती है। अगली पंक्ति में हमारा लक्ष्य अंतर विरोधों के बावजूद और उनके बीच से यह बताना होगा कि अपनी अपनी जमीन, अपनी अपनी शक्ति और सीमाओं के होते हुए भी सामान्यतः अपने समय के लिए और हमारे समय के लिए भी भक्ति कविता का, सगुण और निर्गुण भक्ति कविता का महत्वपूर्ण सामाजिक सांस्कृतिक प्रदेय क्या है। भक्ति काव्य की ये सामाजिक सांस्कृतिक उपलब्धियां इन भक्तों और संतों के अपने समय और समाज के किए गए साक्षात्कार के क्रम में, उनमें इनके द्वारा किए गए हस्तक्षेप के क्रम में और इनके अपने गहरे रचनात्मक आत्मसंघर्ष के क्रम में सामने आई है। इन उपलब्धियों के पीछे गहरी और कठोर साधना का एक जीवंत इतिहास है, उसकी अपनी सफलताएं, असफलताएं, असंगतियां और अंतर विरोध है। कुल मिलाकर वे हमारी मूल्यवान विरासत है। आइए अपनी इस विरासत का हम खुले मन से जायजा लें। पैराग्राफ चेंज। भक्ति काल और भक्ति काव्य की चर्चा करने वाले सभी विद्वानों ने उस युग को सामाजिक और सांस्कृतिक संक्रांति का युग माना है, जिस युग में निर्गुण संत और सगुण भक्तों की वाणी मुखर हुई और जिसे भक्ति काव्य कहा जाता है उसका उद्भव संभव हुआ। इस संक्रांति का मुख्य कारण भारत के सामाजिक सांस्कृतिक जीवन में इस्लामी धर्ममत का आगमन और प्रसार था। पृष्ठ संख्या 290। इस बात को लेकर आचार्यों में भले ही मतभेद हो कि भक्ति काव्य के आविर्भाव के मूल में इस्लाम का क्या और कैसा प्रभाव है, जहाँ तक चले आ रहे भारतीय समाज का सवाल है, यह सब स्वीकार है कि इस्लाम के आगमन ने उसे एक गहरा धक्का दिया। विभिन्न धार्मिक संप्रदायों में बटे हुए विद्यमान भारतीय समाज को एक व्यापक हिंदू धर्ममत के तले एकजुट होने के लिए विवश होना पड़ा। इस्लाम की ओर से आई सामाजिक सांस्कृतिक चुनौती को इसी प्रकार झेला जा सकता है और उसका प्रतिकार किया जा सकता है। विश्रृंखलित होती हुई समाज व्यवस्था पर भी ध्यान दिया गया और रास्तों की खोज के प्रयास हुए, जो भक्ति और अध्यात्म के संदर्भ में जनता के एक बड़े भाग को बिना किसी भेदभाव के आकर्षित करने और समेटने में सक्षम हो। सामाजिक स्तर पर भेदभाव विहीन सामाजिक संरचना का सवाल जटिल होने के नाते भले ही विचारणीय न बन पाया हो, परंतु धर्म तथा भक्ति के अगुआ लोगों ने, आचार्यों और धर्माचार्यों ने कम से कम भक्ति के धरातल पर मनुष्य और मनुष्य में भेद न करने की बात को जरूर उठाया और युग की अपनी विशेष स्थिति के संदर्भ में वे इस अभियान में बहुत कुछ सफल भी हुए। उनकी इस सफलता को निर्गुण संतों की रचनाशीलता और सोच में लक्ष्य भी किया जा सकता है। निर्गुण संत कविता को अपनी आत्मीयता के दायरे में उसकी पूरी उष्मा तथा प्रभाव के साथ स्वीकार न करने वाले आचार्य शुक्ल इस बात को स्वीकार करते हैं कि कालदर्शी भक्त कवि जनता के हृदय को संभालने और लीन रखने के लिए दबी हुई भक्ति को जगाने लगे। क्रमशः भक्ति का प्रभाव ऐसा विस्तृत और प्रबल होता गया कि उसकी लपेट में केवल हिंदू जनता ही नहीं, देश में बसने वाले सहृदय मुसलमानों में से भी न जाने कितने आ गए। प्रेम स्वरूप ईश्वर को सामने लाकर भक्त कवियों ने हिंदुओं और मुसलमानों दोनों को मनुष्य के सामान्य रूप में दिखाया और भेदभाव के दृश्यों को हटाकर पीछे कर दिया। पैराग्राफ चेंज। शुक्ल जी ने यह बात मुख्यतः निर्गुण भक्ति के कविता को लक्ष्य करके लिखी है और इस क्रम में नामदेव और कबीर जैसे संतों का जिक्र विशेष रूप से किया है। हम कह चुके हैं कि निर्गुण संत कविता से आत्मी न होते हुए भी उन्होंने उक्त संदर्भ में और उक्त लक्ष्य के तहत उसके आविर्भाव को उस युग की एक महत्वपूर्ण सांस्कृतिक सामाजिक जरूरत और उपलब्धि के रूप में स्वीकार किया है। यह निर्गुण कविता अनेक कारणों के चलते कालांतर में पंथबद्ध होकर निष्प्रभावी भले ही बन गई हो, उसकी और जो भी असंगतियां और सीमाएं हों, तत्कालीन सामाजिक सांस्कृतिक क्षितिज में उसका आविर्भाव और उसमें नानक, दादू, कबीर, नामदेव, रैदास जैसे संतों का योगदान एक बड़ी सामाजिक सांस्कृतिक उपलब्धि है। इसे अस्वीकार नहीं किया जा सकता। पृष्ठ संख्या 291। उपलब्धि और बड़ी उपलब्धि वह इसलिए कि भले ही धर्म और भक्ति के क्षेत्र में ही सही, किंतु सामाजिक जीवन के बीच पहली बार वर्ग, वर्ण, जाति, धर्म, नस्ल और संप्रदाय के भेदों तथा बंधनों को अमान्य करते हुए मानव हृदय के एकात्म तथा भक्ति के संदर्भ में मानव मात्र की समानता को रेखांकित किया गया। यह काम भले ही भक्ति और ईश्वरोपासना के सीमित क्षेत्र में हुआ हो, इसका प्रभाव भेदभाव बरतने वाली चली आ रही सामाजिक संरचना और उस संरचना को उचित ठहराने वाली सोच पर भी पड़ा, उस साधारण जनता पर पड़ा जो सामाजिक भेदभाव का शिकार बनती हुई सदियों से एक अमानवीय जिंदगी जीने के लिए अभिशप्त थी। स्मरण रहे, हिंदू मुस्लिम एकता इन संतों का लक्ष्य नहीं था, वरन भक्ति का ऐसा मार्ग निकालना उनका संदेश इनका लक्ष्य था, जिस पर किसी भी प्रकार की भेद बुद्धि से रहित मनुष्य सात्विक अंतःकरण और मन से चल सके, उसे बिना किसी हिचक के सुन सके और सहे सके। हम कह चुके हैं, सदियों से पीड़ित और कुचली हुई एक विशाल मनुष्यता ने इस रास्ते को अपनाया और इस संदेश को सुना। पहली बार उसमें आत्मगौरव की, मनुष्य होने की भावना जागी, अपने ढंग से ही सही और उसकी बात को विशद न करते हुए भी कबीर पर अपने सारे आलोचनात्मक तीव्र के बावजूद शुक्ल जी इस बात को स्वीकार करते हैं कि उन्होंने एक नाजुक मौके पर जनता के एक बड़े भाग को संभाला और नीची कही जाने वाली जातियों के मन में आत्मगौरव का भाव जगाया। इन संतों ने, विशेषतः नानक और कबीर ने, चली आ रही सामाजिक संरचना की, उसके प्रभुओं और मसीहाओं की, उनकी अमानवीयता की, धर्म और मजहब के नाम पर कर्म कांडों की, पूजा पाठ, आराधना और उपासना के खोखले तौर तरीकों की, वे किसी भी प्रकार धर्म और मजहब के हो, जमकर भर्त्सना की, उनकी मखौल उड़ाई, परंतु इससे उनकी वाणी को विध्वंसक करार देना, इन्हें लोक विरोधी कहना, समाज विरोधी कह लेना उचित नहीं है। यह गलती आचार्य शुक्ल से हुई है। वस्तुतः इन सारी आलोचना की बुनियाद पर एक मानव धर्म और एक मानव संस्कृति की वह इमारत खड़ी हुई है। मनुष्य सत्य का वह आदर्श स्थित है जिसकी बड़े संजीदा और बड़े सात्विक निर्मल मन से इन संतों ने परिकल्पना की थी और जिसके लिए वे आजीवन संघर्षरत रहे। हमने कहीं कहा है, ये बड़ी कोमल संवेदनाओं के, मानवीय करुणा की बड़ी तरल अनुभूतियों के संत हैं। पृष्ठ संख्या 292। मनुष्यता के दुख दर्दों से द्रवीभूत होकर ही इनकी वाणी मुखर हुई है। यदि वह कहीं कठोर और आक्रामक है तो अमानवीय इरादों के खिलाफ ही, जिन्हें इनकी प्रशस्त अमानवीयता किसी सूरत में सहन नहीं किया जा सकता। निर्गुण संतों की यह वाणी उस युग के बृहद सामाजिक अन्याय और धार्मिक पाखंड के बीच गूंज सकी, सुनी जा सकी, उनका अनुगमन हो सका, उस युग की महत्व उपलब्धि होने के साथ साथ वह हमारी विरासत है। आज नई सदी, शताब्दी के इस आरंभिक चरण में समाज और धर्म की विनाशक शक्तियां एक बार फिर से हमारे सदियों के अर्जित उन्नत सामाजिक मूल्यों को छत विक्षत करने पर उतारू है। धर्म को पुनः संकरी और संकीर्ण गलियों में ढकेला जा रहा है, उसे विरूप और विद्रूप किया जा रहा है। निर्गुण संतों की यह विरासत हमारी मार्गदर्शक ही नहीं, हमारा वह हथियार भी है जिसके बल पर हम इन समाज और धर्म की विघटनकारी शक्तियों से लोहा ले सकते हैं। कहना न होगा कि लंबे अंतराल के बाद ये संत आज हमारे लिए फिर से प्रासंगिक हो उठे हैं। प्रासंगिक वे पहले भी थे, परंतु आज की स्थितियों ने उनकी प्रासंगिकता का न केवल गहरा एहसास हमें कराया है, उसे सार्वकालिक भी बना दिया है।